हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनाही अभी भी कुछ गुस्से में तो कुछ बेबसी में रूहान को देख रही थी, जो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो गाड़ी में जाकर एक टिफ़िन लेकर आया जो बहुत बड़ा था। शायद उसमें तीन पार्ट्स बने थे जिनमें वो अनाही के लिए अलग अलग तरीके का खाना लेकर आया था। वो तेज़ कदमों से चलकर वापस बालकनी के पास आया। उसने वहां लगे पाइप को देखते हुए हल्की सी स्माया के साथ अपने मन में कहा, मैं जानवरों को बचाने के लिए इतनी बार पेड़ पर चढ़ चुका हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आज अपनी मैडम जी को ज़रूर खाना खिलाऊंगा। इतना बोलकर वो उस पाइप के ज़रिए ऊपर चढ़ने लगा। वहीं अनाही अपना सर पकड़े खड़ी थी। वो न रूहान को रोक पा रही थी और न ही खुद को। उसके दिल में अजीब सी घबराहट चल रही थी, लेकिन एक बात तो तय थी, उसे रूहान पर गुस्सा बहुत आ रहा था। इतना कि उसका मन कर रहा था एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाकर उसे बताए कि बारिश में भीगने से वो कितना बीमार हो सकता है। थोड़ी देर बाद ही रूहान के दोनों हाथ रेलिंग पर आ गए थे। अनाही ने आगे बढ़ते हुए उसके हाथ से वो टिफ़िन ले लिया, जिससे रूहान अब आसानी से अंदर की तरफ कूद गया। उसके वहां आते ही फर्श पर उसके कपड़ों का पानी बिखरने लगा था और वो बुरी तरह हंसते हुए अब गौर से अनाही के चेहरे को देख रहा था, जिसे देखने के लिए कितना बेसब्र था, कितना तड़प रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अनाही के गाल को छूना चाहा, लेकिन फिर खुद ही रुक गया, क्योंकि उसका हाथ बर्फ जितना ठंडा था। उसने अपना हाथ वापस नीचे करते हुए कहा, अब आप खाना खा सकती हैं मैडम जी, मैं आपको भूखा नहीं रहने दूंगा। अनाही ने अपना माथा पीटते हुए कहा, मैंने आप जितना ज़िद्दी इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है। आप यहीं रुकिए, मैं टॉवल लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद ही टॉवल लेकर बाहर आई। आगे बढ़कर उसने रूहान के बालों को टॉवल से पोंछते हुए गुस्से में कहा, आप अपना बचपन कब छोड़ने वाले हैं? आपको क्यों नहीं समझ आता है मेरी बातें? तो जैसे आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, बस ऐसे ही चिल्लाती रहती हूँ मैं। तो रूहान उसके करीब को महसूस करके खुद को अलग ही सुकून में पा रहा था। वो बस अनाही के हिलते गुलाबी होंठों को देख रहा था, उसके शरीर से आती उस भीनी सी खुशबू को महसूस कर रहा था। बाकी उसे अनाही की डांट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार अनाही सही तो कह रही थी, उसके डांटने से उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था जब तक वो सच में नाराज ना हो जाए। अनाही ने उसके बाल पोंछने के बाद कहा, हमको कपड़े भी बदलने पड़ेंगे, और मैं तो लड़कों वाले कपड़े भी नहीं पहनती हूँ, आप पहनेंगे क्या? ऐसा बोलकर अनाही अपना निचला होंठ काटते हुए कुछ सोचने लगी, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो अपने सूट सलवार तो नहीं दे सकती थी रूहान को पहनने के लिए। रूहान ने अपने शूज और सॉक्स उतारते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं, मैं ये कपड़े निकाल देता हूँ, जब सूख जाएंगे तो वापस पहन लूँगा। ये सुनकर अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तो क्या आप मेरे सामने बिना कपड़ों के रहेंगे? आपका दिमाग तो सही है, आप है बेशर्म, लेकिन मैं नहीं हूँ। इतना बोलते हुए अनाही का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो जल्दी से बोली, नहीं, बिना कपड़ों के नहीं रहूँगा, लेकिन टॉवल में तो रह सकता हूँ ना? अपने पति को मुझे बिना कपड़ों देखा है तो इसमें इतनी शर्माने वाली बात कौन सी है? और अब तो हमारा रिश्ता भी हो गया है, तो मुझे आपके सामने अब शर्म नहीं आती है। ये सुनकर तो अनाही का मन कर रहा था वो गड्ढा खोदकर अभी उसमें छुप जाए, जहाँ रूहान की नज़रें उसे चाह कर भी ढूंढ न पाएं। उसने शर्माते हुए कहा, आप भूल नहीं अभी तक? उसे किसी को उसकी लड़खड़ाती जुबान और शर्माते चेहरे को देखकर रूहान ने हल्की सी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, नहीं और न कभी भूलूंगा, और भूलना भी नहीं चाहता हूँ, और आपको भी नहीं भूलने दूंगा, प्रॉमिस। अनाही ने आंखें बड़ी करके रूहान को देखा, जो अब कमरे के अंदर जा रहा था। अनाही ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे भी क्या ज़रूरत थी किस करने की, जब वो फर्स्ट किस ही नहीं थे। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वो अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई और फिर उसने उस टिफ़िन को खोल कर देखा। एक डिब्बे में गुलाब जामुन थे, दूसरे में छोले की सब्ज़ी थी और थर्ड में पूरियाँ। उसे सादे से खाने को देखकर अनाही के होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। हाँ, उसे ऐसा ही खाना पसंद था, बर्गर पिज्ज़ा नहीं, ये सब विहा को पसंद था। अनाही ने धीरे से कहा, मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। और फिर खुद ही दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसी तो नहीं थी। गलत कहते हैं लोग कि सच्चा प्यार करने वाला वो होता है जो आपको आपके हिसाब से एक्सेप्ट कर ले। मेरे हिसाब से सच्चा प्यार करने वाला वो है जो अपने वाले के हिसाब से चेंज हो जाए, जैसे रोहान जी मेरे लिए सूटेबल बनने की कोशिश कर रहे हैं और मैं उनके लिए। मुझे अपनी पुरानी रूह से प्यार था, लेकिन ये नया वाला भी बुरा नहीं है। वो फोकट में बातें कर ही रही थी कि रोहान अपनी कमर पर टॉवल टबल रैप करके बाथरूम से बाहर आया। अनाही ने उसकी तरफ देखा, उसके ऐप्स से अब पानी की बूंदें टपक रही थीं और उसका चेहरा हल्का लाल था। भीगे बाल उसके माथे पर चिपके थे और उसकी पलकें भी गीली इकट्ठी हो गई थीं। वो बहुत हसीन लग रहा था। रोहान अनाही के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए मैडम जी, चांद देख लीजिए। अब तो आसमान वाला चांद भी वही है और आपका पति भी यहाँ है। अब आप खाना खा सकती हैं ना? अनाही ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और फिर उसका हाथ अपने हाथ से हटाते हुए बोली, एक मिनट रुकिए, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो कमरे के एक कोने में गई जहाँ उसने पूजा का सामान रखा था। वो थाली लेकर बाहर आई और फिर अपने सर पर साड़ी का पल्लू रखते हुए वो सारी विधि करने लगी जो जो उसने अपनी माँ को अपने पापा के लिए करते हुए देखा था। रुहान बड़े गौर से उसे देख रहा था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। वो घर में पूजा पाठ वाली चीज़ों में ज्यादा शामिल नहीं होता था, तो उसे इन सब का ज्यादा पता नहीं था। उसके लिए तो हर एक चीज़ नई थी। अनाही ने अपने हाथ में पड़ा पानी का कलश उसके हाथ में देते हुए कहा, अब आपको मुझे इससे पानी पिलाना है। रुहान ने फुल एक्साइटमेंट में खुश होते हुए अनाही को पानी पिलाया और उसके बाद अनाही वापस कमरे में आई। उसने वो गुलाब जामुन वाला डिब्बा उठाया और फिर उसे रुहान के पास ले जाते हुए बोली, अब आप मुझे गुलाब जामुन भी खिला सकते हैं। रुहान ने उसे गुलाब जामुन खिलाया और उसके बाद अनाही ने रुहान की तरफ छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, उपवास तो आपका है ना, तो आप मुझे क्यों खिला रही हैं? अनाही मुड़कर वापस कमरे में आते हुए बोली, क्योंकि मैं अपने पति को अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो उसने भी नहीं खाया होगा और आपकी आंखों को देखकर पता चल रहा है आप कितना रोए हो। आपको अजीब नहीं लगता? हार्टलेस इंसान से एकदम से आप इमोशनल फूल बनते जा रहे हो। आप सिर्फ एक लड़की के लिए रो रहे थे जो कभी न कभी आपके पास वापस आने ही वाली थी। रुहान तीव्र कदमों से उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, नहीं, मैं ऐसी लड़की के लिए नहीं रो रहा था। मैं तो उस लड़की के लिए रो रहा था जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया है और किसी भी हाल में मैं उसे खो नहीं सकता। आपके लिए सब कुछ बहुत छोटी चीज है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में वो नहीं देखा है जो मैंने देखा है। आपका प्यार से मुझे खाना खिलाना भी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, शायद मैं आपको कभी समझा पाऊँ। अनाही ने हल्के से मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और फिर उसे सोफे पर अपने पास बिठाते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरे लिए इतने सारे एफर्ट करने के लिए।
फिर अचानक ही उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैं तो आज वेदांत जी के बारे में सोचकर परेशान हूँ। उनका क्या हाल हो रहा होगा? वे हाँ, मेरे बिना तो उपवास खोलने के लिए नहीं मानेगी। वो बहुत जिद्दी है।